think we are moving toward the finishing line at a good pace, it seems.
Hamari jo gati hai, jo samapti ki jo rekha hai, bahut hi achhi hai.
And I have come to the last class of mine.
Aur meri jo aakhri jo class hai, main wahan aa gaya hoon.
Thank God for this opportunity the Lord gave me to be with you all and share God's word.
और परमेश्वर का धन्यवाद हो कि मैं आपके साथ हूँ और परमेश्वर के वचन का मैं आपके साथ बांट सकूं।
But I am thankful to God for this opportunity. I am greatly thankful to the brethren in Borivali Assembly for extending this opportunity.
और परमेश्वर का धन्यवाद इस अवसर के लिए और जो बोरीवली असेंबली के कलीसिया के जो भाई हैं उनके लिए भी धन्यवाद।
I mentioned that the first day, well, we can see the Lord's guidance. In the gathering in this conference, even the choosing of the topic and all things.
और हम प्रथम दिन ही हमने इस बात का जिक्र किया परमेश्वर की अगुवाई और जो इस कॉन्फ्रेंस में जो विषय जो चुने गए हैं उसके संबंध में भी.
It's my prayer that the thoughts, the truths that we consider together may help us in one way or the other in the days ahead in our assembly living together.
और मेरी यही प्रार्थना है हमारे कलीसिया के जीवन में जिन सत्य बातों को हमने विचार किया है वो हमारी सहायता करे.
My classes, I began with the gatherings.
और मेरी जो क्लास थी उसमें इकट्ठे होने के विषय से हमने आरंभ किया था.
The last class, I've been sharing certain truths about the administration of the church.
और पिछले क्लास में कलीसिया का कैसा शासन है उसके बारे में मैंने कुछ बातें आपको बताई.
We saw that God is concerned and is careful with the assemblies, the local assemblies.
और हमने ये देखा कि परमेश्वर को चिंता है स्थानीय कलीसिया के विषय में.
He has provided the needed men, needed people for the keeping of the assemblies.
और कलीसिया के लिए जो आवश्यक मन जो पुरुष हैं जो मनुष्य हैं उन्हें उसने प्रस्तुत किया है प्रदान किया है.
We had seen that seven officers in that provision.
और उस प्रबंध में हमने सात उन ऑफिसों को या उन कार्यों को हमने देखा.
एंड आउट ऑफ दैट वी हैड चोसन थ्री ऑफिसर्स फॉर आवर कंसिडरेशन.
और हमारे चिंतन के लिए हमने उन तीन ऑफिस या उन कार्यों को हमने देखा.
वी सॉ द सोर्स ऑफ इट वाज द रिसन द एक्साल्टेड लॉर्ड.
और उसका जो स्रोत था वो जी उठा और ऊंचे पे उठाया हुआ हमारा प्रभु.
वी हैड सीन व्हाई गॉड गेव ऑल दिस प्रोविजंस.
और हमने ये भी देखा कि परमेश्वर ने क्यों ये प्रबंध दिया.
एंड देन वी हैड सीन ऑल्सो द अपॉइंटमेंट ऑफ दिस ऑफिसर्स और दिस मैन ऑफ द चर्च.
और फिर हमने कैसे इन पुरुषों को ये कलीसिया में कैसे उन्हें नियुक्त किया वो भी हमने देखा.
इट्स नॉट ऑफ मैन.
मनुष्य की ओर से नहीं.
It's of God.
परमेश्वर की ओर से है.
We cannot appoint.
हम किसी को नियुक्त नहीं कर सकते.
Because it's the house of God.
क्योंकि ये परमेश्वर का भवन है.
It's God who appoints his men over his flock.
और परमेश्वर है जो अपने झुंड के ऊपर मनुष्य को नियुक्त करता है.
By the Spirit he works in our heart and helps us to recognize such men in the assembly.
और परमेश्वर की जो आत्मा है वो हमारी सहायता करती है कि ऐसे मनुष्यों को हम ताड़ लें या पहचान लें.
Now from there we will continue with that same topic.
और इस विषय में हम आगे बढ़ेंगे.
In this session, I have to share a few thoughts on the duties of these leaders.
और ये मेरे सेशन में ये जो अगुवे हैं ये जो नेता हैं उनके जो कार्य सूची है उसके बारे में मैं आपको बांटना चाहता हूँ.
I have to say about the qualification of these leaders.
और उनकी जो योग्यता है इन अगुओं की.
And then I have to mention also our response or the response of the flock towards the leadership.
और ये जो अगवे हैं उनके प्रति जो जिम्मेवारी या जो उत्तरदायित्व है वो झुंड का वो भी हम देखेंगे.
To begin with,
शुरू में
let's turn to Titus chapter 1.
आइए तीतु की पत्री उसके पहले अध्याय को देखें. तीतु की पत्री उसका पहला अध्याय.
We will read from verse 5 on till verse 11.
5 से 11 तक हम पढ़ेंगे. मैं इसलिए तुझे क्रेत में छोड़ आया था कि तू शेष बातों को सुधारे और मेरी आज्ञा के अनुसार नगर नगर प्राचीनों को नियुक्त करे जो निर्दोष और एक ही पत्नी के पति हो जिनके बच्चे विश्वासी हों और उन्हें उनमें लुचपन और निरंकुशता का दोष ना हो, क्योंकि अध्यक्ष को परमेश्वर का भंडारी होने के कारण निर्दोष होना चाहिए, ना हटी, ना क्रोधी, ना पियक्कड़, ना मारपीट करने वाला और ना नीच कमाई का लोभी हो, पर अतिथि सत्कार करने वाला, भलाई का चाहने वाला, संयमी, न्यायी, पवित्र और जितेंद्रिय हो, और वह विश्वास योग वचन पर जो धर्म उपदेश के अनुसार है स्थिर रहे, कि खरी शिक्षा के उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके।
May the Lord add his blessings upon the reading of this verses.
और परमेश्वर अपनी आशीष इस पढ़े जाने वचन के ऊपर दे।
Paul is writing to Titus.
पौलुस तीतु को लिख रहा है।
In verse 5 he reminds about the responsibility that was rested upon Titus.
और पांचवें वचन में जो जिम्मेवारी तीतु को सौंपी गई थी उसे वो स्मरण दिलाता है।
That is, as we explained in the last class also, he was supposed to help the assembly there to recognize the elders among them.
और जैसे हमने हमारे पिछली क्लास में भी देखा था, वहां की स्थानीय कलीसिया की वो सहायता करे कि प्राचीनों को वो ताड़ सके, वो लोग या पहचान सके।
When he does that,
और जब वो करता है,
well, he needs a certain guidance.
उसके लिए थोड़ी सी उसकी अगुवाई की आवश्यकता है।
So in this writing from verse 6 onwards, we see Paul giving that guidance that's essential for him to fulfill his duty.
और छह वचन के आगे हम देखते हैं पौलुस जो अगुवाई उसे इस बात के हेतु जो उसे जरूरत है उसे वो प्रदान करते हुए देखते हैं।
What should be the qualifications of those elders?
और वो जो अगवे हैं या जो प्राचीन हैं उनकी क्या योग्यता होनी चाहिए?
He says that from verse 6 onwards to the beginning of verse 9,
नौ वचन के शुरुआत तक छह से हम इन बातों को देखते हैं।
एंड देन टुवर्ड्स द एंड ऑफ वर्स 9
और नौ वचन के अंतिम भाग में
ही सेज व्हाई दिस क्वालिफिकेशंस दे शुड हैव
और ये जो योग्यता है उनमें क्यों होनी चाहिए।
व्हाई गॉड सेट्स सच अ हाई स्टैंडर्ड फॉर द लीडरशिप ऑफ द असेंबली
और कलीसिया के अगुओं के प्रति इतनी उच्चतम योग्यता क्यों परमेश्वर ने रखा।
द रीजन इज देयर ड्यूटीज
उनका जो कार्य है इसके कारण।
What are the duties?
उनका कार्य क्या है?
Come to the last portion of verse 9.
नौवे वचन के हम अंतिम भाग में हम आए।
There we read like this.
वहां पर हम इस प्रकार पढ़ते हैं।
That he may be able by sound doctrine both to exhort and to convince the gainsayers.
स्थिर रहे कि खरी शिक्षा से उपदेश दे सके और विरोधियों का मुंह भी बंद कर सके।
There we see two fold duties.
यहां पे दो जो उसके कार्य को हम देखते हैं।
नंबर वन,
पहला
एक्सोट,
वो है शिक्षा से।
एंड नंबर टू,
दूसरा
कन्विंस
और उपदेश देकर।
नहीं,
कन्विंस
द एरर द रॉन्ग टीचिंग,
विरोधियों का मुंह बंद कर।
सो टू एक्सर्ट एंड टू कन्विंस
और उन्हें खरी शिक्षा और उपदेश देखिए मतलब या उनका मुंह बंद करें।
द फर्स्ट वन इज टू एक्सर्ट
और पहला है कि उन्हें शिक्षा दे।
दैट इज एनकरेजिंग द बिलीवर्स
वो है कि विश्वासियों को प्रोत्साहित करें।
एंड ऑन द अदर साइड
और दूसरी तरफ
कन्विंस द गेनसेयर्स दोस हू टीच एरर्स वेल यू शुड speak to them and eliminate the error from the gathering.
और उन लोग जो विरोध करते हैं उनका मुंह बंद करें जो गलत शिक्षा देते हैं।
That brings before us this twofold responsibilities of this people.
और इन लोगों के जो दो बातें हैं जो उनके कार्य हैं वो हमारे सामने आती हैं।
On the one side, it is to encourage the saints.
एक तरफ हम देखते हैं संतों को वो प्रोत्साहित करें।
That they may be edified.
ताकि वो ऊंचे उठा जाए।
That they become like Lord Jesus Christ.
ताकि वो प्रभु यीशु मसीह के समान हों।
On the other side,
और दूसरी तरफ,
well, they have to eliminate the errors, the evil from the gatherings.
और जो इकट्ठा होने में जो गलत शिक्षा है उसे वो हटा सके।
I will be dwelling only upon the first one.
हाँ, मैं जो पहली बात है उसी पे मैं ठहरा रहूंगा।
I hope that dealing with the evil, dealing with the sins in the assembly or the disciplining part of it is being considered in another class.
और मैं विश्वास करता हूं कि दूसरी क्लास में जो
कलीसिया में जो अनुशासन है उसके बारे में देखा जाएगा.
सो आई विल बी ड्वेलिंग अपॉन द एनकरेजमेंट ऑफ द सेंट्स और द ड्यूटीज ऑफ द लीडर्स टुवर्ड द सेंट्स.
और मैं उनको संतों को प्रोत्साहन करना या जो अगुवे हैं उनका जो जिम्मेवारी है संतों के प्रति उसे हम देखेंगे.
व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द लीडर्स और द एल्डर्स इन द लोकल असेंबली.
और स्थानीय कलीसिया में अगुओं का क्या कार्य है, उनकी क्या जिम्मेवारी है.
Come at 9 o'clock itself on Sunday morning and open the hall. Is it?
9 बजे आए और हॉल को खोलें.
Keep all the table ready, right?
और मेज को तैयार रखें.
If you want to write a letter, well, see that it's being drafted and put the signature under that.
और किसी चिट्ठी लिखना है तो उसको लिखें और फिर अपना हस्ताक्षर करें.
When you understand that all have finished their worship, get up and break the bread.
और देखा कि सबने आराधना करने के बाद वो खड़े होकर रोटी तोड़े.
आर दिस द ड्यूटीज ऑफ द एल्डर्स.
क्या ये प्राचीनों का ये उनका जिम्मेवारी या उनका कार्य है.
यस दे मे डू दैट, दे हैव टू लुक आफ्टर दोस थिंग्स ऑल्सो.
शायद उन्हें वो भी करना है, उन्हें भी देखरेख करना है.
बट व्हेन यू कम टू द स्क्रिप्चर.
मगर अब जब शास्त्र में आते हैं,
वी सी एज द ड्यूटीज ऑफ द लीडर्स देयर आर हायर कंसर्न्स.
मगर जब अगुओं के जो कार्य है वो थोड़े और भी ऊंचे स्तर पे हैं.
Just want to bring to your attention about 7 points as their duties.
और मैं 7 बातों को उनके जो कार्य है उनकी जो जिम्मेवारी है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं.
Coming first of all to 1 Peter chapter 5 verses 1 and 2.
सबसे पहले पहला पत्रस उसका 5वां अध्याय और उसका 1 और 2 वचन पढ़ेंगे. पहला पत्रस 5वां अध्याय उसका 1 और 2.
Yeah, please.
अपने मध्य सिर्फ परमेश्वर के झुंड के रखवाले करो और ये किसी दबाव से नहीं पर तरह परमेश्वर की इच्छा के अनुसार
के लिए नहीं. Here we see Peter exhorting the elders in the local assemblies.
यहाँ पे पत्रस जो है स्थानीय कलीसिया में प्राचीनों को उत्तेजित करते हुए हम देखते हैं.
There in verse 2 he reminds them their responsibility.
और वहाँ पे उनकी जिम्मेवारी को वो याद दिलाता है.
Feed the flock of God which is among you.
और परमेश्वर के झुंड की रखवाली करो जो तुम्हारे मध्य में है.
When you say feed the flock,
और जब हम देखते हैं झुंड की रखवाली करो,
it's not simply giving the food,
ये ना वो सिर्फ उनको भोजन प्रस्तुत करने की बात नहीं है.
In fact, that means to do all that's being involved in looking after the flock.
और वो पूरे झुंड की जो तमाम बातें हैं वो याद दिलाता
है. It includes all the shepherding responsibilities.
वो पूरे चरवाहे की जिम्मेवारी को बताता है.
When you come to Psalm 23, we see the long list of the shepherding responsibilities.
और भजन 23 में हम देखते हैं उस चरवाहे की जो जिम्मेवारी है उसकी लंबी सूची.
The shepherd leads that flock to the fresh waters.
और बहते हुए जो जल है जो सोता है चरवाहा उन्हें वहां पे लेता है.
Leads them to the green pastures.
और हरी चराइयों में ले जाता है.
And goes with it.
और उनके साथ चलता है.
Anoints his head with oil.
और तेल से उनके शर को अभिषेक करता है.
Lot of things we see over there.
बहुत सी बातों को वहां पे देखते हैं.
Lot of things are involved in the shepherd as reporting responsibility.
और जो चरवाहे की जो जिम्मेवारी है बहुत सी बातें हैं.
But among all that,
और इन तमाम बातों
में, the most important is to see that they get the right food.
और सबसे मुख्य बात है कि उनको सही चारा या भोजन मिलता है.
Feed the flock.
और उनकी रखवाली कर.
When you come to Acts 20 and 28, there also we see the same responsibility being implied.
और प्रेरितों का काम उसका 20वां अध्याय के 28वें वचन में भी हम इसी बात को देखते हैं.
There Apostle Paul reminds the elders in Ephesus.
और वहां पे एफेसस के जो प्राचीन है उसको वो स्मरण दिलाता है.
He says that the Holy Spirit has made you overseers of of the flock.
और वो कहता है कि पवित्र आत्मा ने झुंड के ऊपर तुम्हें रखवाली करने के लिए ठहराया.
And he says that they should take heed that they give, they feed the flock which is under them.
और वो उन्हें इस बात की सतर्कता देता है कि जो झुंड तुम्हारे नीचे दी गई, अधीन दी गई है, उनकी तुम रखवाली करो.
This is the most important duty of the elders in the assembly.
और कलीसिया में सबसे विशेष जो उनका जिम्मेवारी है,
इफ यू वांट टू गिव फूड,
यदि उनको आप भोजन प्रस्तुत करना है,
इफ यू वांट टू नरिश द फ्लॉक,
यदि आप उनकी पालन पोषण करना है,
फर्स्ट ऑफ ऑल यू योरसेल्फ ऑट टू बी नरिश्ड.
सबसे पहले आप स्वयं अपना पालन पोषण कीजिए.
इफ यू डू नॉट नो द वर्ड ऑफ गॉड,
यदि आप परमेश्वर के वचन को नहीं जानते,
वेल यू कैन नॉट गिव द फूड टू अदर्स,
दूसरों को ये भोजन नहीं दे सकते.
यू कैन नॉट गिव द वर्ड ऑफ गॉड टू अदर्स,
परमेश्वर के वचन दूसरों को नहीं दे सकते.
सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एल्डर्स, फॉर द लीडरशिप ऑफ द असेंबली, ऑल दोस हू आर रिस्पॉन्सिबल इन द असेंबली टू सिट एंड स्टडी गॉड्स वर्ड.
और ये बहुत ही विशेष मायने रखता है, परमेश्वर के वचन का अध्ययन करके बैठ के उसका ध्यान करें.
But how much time do we spend with the word of God?
कितना समय हम परमेश्वर के वचन के लिए देते हैं?
There was a time when we used to say that the assembly people are very strong in God's word and doctrines.
और एक ऐसा समय था कि हम कहा करते थे कलीसिया के जो लोग हैं परमेश्वर के वचन और उपदेश में बड़े खरे हैं.
But it seems that those things are now become the part of history, it's all past.
और अभी ऐसा लगता है कि वो अभी एक इतिहास की एक बात हो गई.
May God give us grace that the leadership, the responsible brethren may be apt to teach others the word of God.
और प्रभु हमारी ऐसी सहायता करे जो अगवे हैं वो दूसरों को परमेश्वर के वचन के द्वारा शिक्षा देने के काबिल हो.
It doesn't mean that they should be eloquent, that they would be able to preach from the pulpit and all that.
इसका मतलब यह नहीं है कि वो मंच में जाके ऐसा प्रचार करें वो.
But they should be sure of God's word.
मगर परमेश्वर के वचन के प्रति उनमें वो निश्चयता होनी चाहिए.
When they see a need in a believer,
जब किसी विश्वासी में वो आवश्यकता को देखते हैं,
they should be able to go to that person and open the word of God to that person.
और उस व्यक्ति के पास जाके परमेश्वर के वचन उन्हें प्रदान करें.
If somebody teaches wrong thing in the assembly,
यदि कोई गलत शिक्षा कलीसिया में देता है,
he should be able to give the right word, the right doctrine.
और सही शिक्षा को वो वहां पे देने के लिए जरूरी है.
Oh yes, the most important thing is that he himself should be fed and nourished that he may be able to teach others.
बहुत सबसे बड़ी विशेष बात है कि वो स्वयं अपना पालन पोषण करे ताकि वो दूसरे को प्रदान कुछ दे सके.
Feed the flock,
झुंड की रखवाली कर.
नंबर टू,
दूसरी बात,
कम टू Hebrews चैप्टर 13.
आइए हिब्रानी के 13वें अध्याय को देखें. हिब्रानी का 13 अध्याय,
लुक एट वर्स 17.
13 अध्याय का 17वां वचन देखें जरा.
या दैट्स इट ब्रदर, फॉर दे वॉच फॉर योर सोल्स,
ताकि वो तुम्हारे प्राणों की चौकसी करते हैं.
या दे वॉच ओवर योर सोल्स,
वो तुम्हारे प्राणों की चौकसी करते हैं.
हाउ देयर वी सी द ड्यूटी ऑफ वॉचिंग ओवर द फ्लॉक,
यहां पे जो झुंड है उनके ऊपर ध्यान रखने के बारे में हम देखते हैं.
Oh yes, in connection with the shepherds and the flock, it's very much true.
और जो चरवाहा है और जो झुंड है, ये बात सत्य है.
After all, the sheep is being brought to the fold.
और जब वो वहां पे भेड़शाला में जब पूरे झुंड को लाते हैं,
Oh, it is told that these shepherds, they lie at the door.
और ये बताया गया है कि ये जो चरवाहा है वो द्वार पे वहां पे लेटे रहते हैं.
So that nothing will go out in the night.
रात में कोई बाहर ना निकले.
And not only that, any wild animal will come and trouble this flock.
ना कोई ऐसा जंगली जानवर आके इस झुंड को सताए.
So he will have to watch there.
और इसे उसे देखना है.
Oh yes, in the assembly also the leadership, the elders, well they watch over the souls.
और कलीसिया में जो अगवे हैं, जो प्राचीन हैं, वो आत्मा का ध्यान या
वॉच ओवर द लाइफ ऑफ द पीपल अंडर दम,
या उनके जीवन के बारे में थोड़ा विचार करें जो उनके अधीन में है.
व्हाट्स द मीनिंग ऑफ द गुड वॉचिंग,
और उनके देखने की या उनको उनके ऊपर चिंता करने की क्या इसका अर्थ क्या है.
हाँ, प्रैक्टिकली व्हाट इज द ड्यूटी अटैच्ड विद दैट.
और अभ्यासिक तौर से देखे इसके साथ कौन सा कार्य जुड़ा हुआ है.
व्हेन यू कम टू एफिशियंस चैप्टर 6 एंड वर्स 18,
यदि हम एफिशियों के पत्री उसके छठे अध्याय के 18वें वचन में
देयर वी सी अनदर वर्ड दैट ऑफन कम्स विद दिस वर्ड वॉच.
और वहां पे देख करने के लिए एक और वचन को हम देखते हैं.
विच वन
क्या है.
Watch and pray.
देखो या उनका देखरेख करके मतलब प्रार्थना करो.
So when you say watching, well, the most important duty that's implied there is praying for the believers, praying for the flock.
और उनके देखरेख या उनकी चिंता करने की जब बात आती है तो सबसे मुख्य विषय यह है कि उनके लिए प्रार्थना करें.
When you come to the case of Apostle Paul, we see him laboring for the believers in prayer.
और हम देखते हैं प्रेरित पौलुस के बारे में वो विश्वासियों के लिए प्रार्थना में परिश्रम करता है.
Paul says about Epaphras, the elder in Colossian assembly, that he labors fervently in prayer.
और Epaphras जो कोलोसिया की कलीसिया का जो प्राचीन है हम उसके बारे में वो ये कहता है कि वो प्रार्थना में बड़ा व्यस्त रहता है.
When we come to the Old Testament, we see Samuel, one of the leaders in Israel.
और हम देखते हैं पुराने नियम में सामुएल जो पुराने नियम में एक अगुआ था.
He says, if I am not praying, I am sinning against the Lord.
और वो ये कहता है यदि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना ना करूं तो मैं प्रभु के विरोध पाप करूंगा.
Yeah, most of us have got leadership responsibilities in the local assemblies.
और ये बात सच है कि स्थानीय कलीसिया में हमारी काफी जिम्मेवारी है.
But let me ask you this question.
मैं आपसे ये सवाल करना चाहता हूं.
How much this people, the flock, the people over whom the Lord has given us the ministry, have got a part in the life, in the personal prayer life of us?
और ये जो लोग जो आपके जिम्मेवारी में जो झुंड दिए गए हैं आपके व्यक्तिगत प्रार्थना जीवन में कितना वो प्रभाव डालते हैं.
Do we pray for them?
क्या हम उनके लिए प्रार्थना करते
हैं? Do we know their needs?
उनकी आवश्यकताओं को हम समझते हैं?
Without praying, we will not increase in the burden to minister to them, and without that, there is no ministry in the assembly.
बिना प्रार्थना किए कोई बोझ नहीं होगा उनके लिए हम सेवा करें और इसके बिना कोई भी सेवा नहीं हो सकती.
I suggest that all the leaders ought to have a list of the believers in the assembly, and systematically you ought to pray for them.
और मैं ये सलाह दूंगा कि जो अगवे लोग हैं हर एक विश्वासी उनके नाम अनुसार उनकी जरूरत अनुसार एक सूची रखें और कर्म अनुसार उनके लिए प्रार्थना करें.
इफ नॉट एवरी डे एटलीस्ट वंस इन ए वीक दे शुड कम इन योर प्रेयर्स.
रोज नहीं तो सप्ते में एक बार वो आपके प्रार्थना में आने की जरूरत है.
It's not sufficient for to think about them when we gather only, but every day they should be in their in your mind.
ये काफी नहीं है जब हम इकट्ठा होते हैं हम उनके बारे में विचारें मगर प्रतिदिन उनको हम अपनी चिंताओं में रखें.
Watch over them means that.
उनके ऊपर ध्यान करना है उसका अर्थ ये है.
Number three.
तीसरी बात.
Hebrews 13 and verse 7.
हिब्रानी का 13 अध्याय का 7वां वचन. जो तुम्हारे अगवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है तुम्हें स्मरण रखो उन्हें स्मरण रखो और ध्यान से उनके चाल चलन का अंत देखकर उनके विश्वास का अनुकरण करो.
When you come to the beginning of that verse 7,
सातवें वचन के जब हम शुरुआत में आते हैं
there is a remember them which have the rule over you.
और जो तुम्हारे अगवे हैं उन्हें स्मरण करो.
them that have rule over you.
जो तुम्हारे अगवे हैं उन्हें स्मरण रखो. वचन सुनाएं that also. जो तुम्हारे अगवे थे और जिन्होंने तुम्हें परमेश्वर का वचन सुनाया है उन्हें स्मरण रखो.
That word having rule over you, I think in Hindi it is not clear. It means those who are guides for you, those who are examples for you.
ये जो अगवे जो हिंदी में है उतना इसका अर्थ सही नहीं है मगर उसका सही अर्थ ये है जो तुम्हें तुम्हारी अगुवाई किए और जो तुम्हारे सामने उनका जीवन एक नमूना था.
You know, the shepherd leads the flock.
आप जानते हैं चरवाहा जो है झुंड की वो नेतृत्व करता
है. And leading the flock, well, it walks, he walks in front of the flock.
और जो अगुवा है वो झुंड के आगे चलता है.
We have that in John chapter 10 and verses 3 and 4.
और यूहन्ना के 10वें अध्याय के 3 और 4 में हम देखते हैं.
And the words of our Lord Jesus Christ, we see the shepherd calling the flock out of the fold and leading or going before it.
वहां पे प्रभु यीशु मसीह हम देखते हैं उस चरवाहा को उस भेड़ को वो बुलाता है और वो आगे आगे चलता है.
In 1 Peter chapter 5 and verse 3, even Peter says that the leaders, the elders ought to be examples to the flock.
और पहला पत्रस पांचवा अध्याय के तीसरे वचन में हम देखते हैं जो प्राचीन है वो झुंड के लिए एक नमूना एक आदर्श बन रहे हो.
Stand before them and be an example that you may be a role model to the whole flock.
आप उनके सामने खड़े रहिए ताकि दूसरों के लिए आप एक नमूना प्रदान करो.
Oh, that to become practical, the elder should see that his life is actually exemplary in every way.
और यदि ऐसा होना है तो जो अगुवा है उसके जीवन को वो खरी रीति से अच्छी रीति से उसे प्रस्तुत करना जरूरी.
If you are not setting your own things in order, you cannot be an example to others.
यदि आप खुद स्वयं अपने जीवन को आप सही नहीं रखेंगे तो आप दूसरों के लिए क्या नमूना प्रदान
करेंगे? Without being an example, you cannot have the moral right to advise others or give a direction to others.
यदि आपके व्यक्तिगत जीवन में आपका सही नहीं है तो आपकी नैतिक जिम्मेवारी दूसरों को अगुवाई करने आपका नहीं है.
When you come to the life of David,
यदि आप दाऊद के जीवन में आए,
we see David dealing with his people in very wonderful way, very wisely.
और हम देखते हैं दाऊद अपने लोगों के साथ बड़े बुद्धिमानी से व्यवहार करता है.
When you look at the relationship that David had with Joab,
आप यदि योआब के साथ जो रिश्ता उसने जो कायम रखा,
it is very interesting.
बहुत ही देखने योग है.
Well, in his inward, in his mind, well, David did not like Joab very much.
और उसके मन के अंदर योआब से योआब को ज्यादा चाहता नहीं.
Once upon a time, he wanted to remove him from his place also.
और एक समय उसे अपने उस स्थान से उसे अलग करना चाहता.
But David didn't have the guts to do it.
मगर दाऊद को वो मतलब वो उतना हिम्मत नहीं थी उसे हटाने की.
Even there were other times when David wanted to be very harsh with Joab.
और दूसरा समय भी दाऊद योआब के प्रति बड़ा कड़ा रुख अपनाना चाहता था.
But we see Joab, I mean David very silent there.
मगर हम देखते हैं योआब बड़ा मौन, दाऊद बड़ा मौन रहता है.
Even when David was going away from this world, he left the duty of dealing with Joab to Solomon.
और हम देखते हैं जब दाऊद इस दुनिया छोड़ के जा रहा था तो योआब के साथ उसके साथ जो रुख अपनाना था उसने सुलेमान को छोड़ दिया.
Why, what happened to David?
दाऊद को क्या हो गया?
Why was he weak with Joab?
योआब के साथ वो क्यों इतना नरमी से व्यवहार करता था?
Joab was the one through whom he eliminated Uriah.
क्योंकि योआब के द्वारा उसने यूराया को वहां से हटाया था.
Joab knew those things very clearly.
योआब इन बातों को अच्छी तरह से जानता था.
Joab knew how cunningly David worked out to see that Bathsheba would be with him.
और योआब जानता था कि दाऊद कितने चतुराई से कार्य किया ताकि बाथशीबा उसके साथ आए.
Then David was not an example.
वहां पे दाऊद एक नमूना प्रदान.
So he became weak there.
वहां पे वो कमजोर हो गया.
He lost his moral authority there.
और उसके नैतिक अधिकार को वो खो दिया.
He was restored in that matter spiritually.
आत्मिक तौर से उसे वापस लाया गया.
But in his dealing with Joab, we see him very weak.
मगर योआब के साथ बर्ताव करने में बड़ा कमजोर था.
Be an example in every way.
हर एक रीति में आप एक उदाहरण एक नमूना.
Stand before the flock.
झुंड के सामने खड़े रहिए.
If you are not keeping your life as it ought to be, well, you will have no moral authority to lead, guide, or even to speak rightly with the people.
यदि आपका जीवन सही नहीं है, आपका कोई नैतिक अधिकार नहीं है झुंड के आप अगुवाई करें या उनको शिक्षा दें या ऐसे कुछ अन्य बात करें.
Feed the flock.
उनकी आप रखवाली करिए.
Watch over them.
उनकी आप देखरेख कीजिए.
Be examples to them.
उनके लिए आप एक नमूना प्रदान कीजिए.
When you come to chapter 13 of Hebrews, we have the fourth one, that is in verse 24.
और 24वें वचन में हम चौथी बात को देखते हैं.
There we see that word that they have the rule over you.
यहां पे सब अगुओं और सब पवित्र लोगों को नमस्कार कहो, इसलिए तुम्हें नमस्कार कहते हैं.
Yeah, there we see about the elders in fact. Salute all them that have the rule over you.
और यहाँ पे उनको नमस्कार करो जो तुम्हारे अगुवे हैं.
There are people, all the elders are the ones who rule over the flock.
और जो अगुवे हैं जो उनको चलाते हैं, उनकी अगुवाई करते हैं.
We have that same idea in other portions also.
और दूसरे भाग में भी यही विचार है.
We don't have time to read all those portions, so we are skipping all those passages.
और हमारे पास समय नहीं है उन भागों को पढ़ने के लिए, मगर उन्हें हम आगे बढ़ रहे.
Many a time when we think of the flock,
और जब हम झुंड के बारे में विचारते हैं,
well, we may say that in the assembly, in the local assembly, there should not be anyone who would be ruling.
और हम कहते हैं कि स्थानीय कलीसिया में कोई ऐसा नहीं होना चाहिए जो उनके ऊपर शासन करे.
But as we have seen many times in the local assembly, in the house of God, God has set people to rule over the flock.
और हम देखते हैं स्थानीय कलीसिया में परमेश्वर ने ऐसे लोगों को नियुक्त किया है जो उनके ऊपर शासन चलाए.
It's not democracy in the assembly.
ये ऐसा लोकतंत्र नहीं है कलीसिया.
As we have seen before, also it's theocracy, and that's being executed through His men whom God has placed.
और वो ईश्वरीय तंत्र या परमेश्वर जिन लोगों को उसने नियुक्त किया उनके द्वारा शासन चलता है.
एंड व्हेन यू कम टू फर्स्ट पीरियड चैप्टर 5,
और जब पहला पत्रस पांचवें अध्याय में आते हैं,
पीटर सेज दैट दिस रूल शुड नॉट बी एज द रूल दैट वी सी इन द वर्ल्ड.
और ऐसा जो शासन है जो संसार में देखते हैं ऐसा नहीं होना चाहिए.
बट दैट रूल शुड बी विद अ सर्वेंट एटीट्यूड.
मगर वो जो शासन है एक सेवक, एक दास का रुख अपनाना हो.
जस्ट एज जीसस क्राइस्ट वॉज देयर अमंग द पीपल, अमंग द डिसाइपल्स एज अ सर्वेंट लीडर, सो शुड दीज लीडर्स ऑल्सो बी अमंग द फ्लॉक.
और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह एक सेवक था और अगुवा था लोगों के बीच में, उसी प्रकार ये अगुओं का भी रुख उन लोगों के बीच में होना चाहिए.
नेक्स्ट वन,
दूसरी बात,
टर्निंग टू फर्स्ट थेसलोनियंस चैप्टर 5 एंड वर्स 12.
पहला तो सोने का पांचवा अध्याय का 12 वचन. पहला तो सोने का पांचवा अध्याय का 12 वचन.
एंड वी बिसीच यू ब्रेदरन टू नो देम व्हिच लेबर अमंग यू एंड आर ओवर यू इन द लॉर्ड एंड एडमोनिश यू.
है भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारी अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो.
There are many things there.
बहुत सी बातें हैं यहाँ.
First we will take the last one.
सबसे पहले हम आखिरी बात को लेते हैं.
There Paul mentions about the elders and says that they admonish you.
और जो तुम्हें शिक्षा देते हैं.
Yeah, the last one and admonish.
Yeah, शिक्षा देते हैं.
That means they that correct you, they that lead you, they that steer you in the right way.
वो जो आपको सुधारते हैं, जो आपको सही रास्ता में लेके चलते हैं.
थिंक अबाउट अ शिप.
एक जहाज के बारे में विचारिएगा.
वेल इट इज इन वॉयज, वेल द कैप्टन ऑट टू बी वेरी केयरफुल सो दैट इट वॉन्ट मीट अ रैकेज.
और जब वो जहाज पानी में चलता है तो जो कप्तान है उसे बहुत ही सतर्क रहना पड़ता है कि कहीं उसको कोई डूबा हुआ जहाज ऐसे अन्य बाधाएं उसके सामने ना आए.
There are rocks in the sea.
वहां पे चट्टाने हैं समुद्र
में. To steer and keep it away from any wreck.
और उन डूबे हुए जहाज से उसे उस जहाज को अलग रखना है.
Like that, the elders also should be in the assembly.
और उसी प्रकार प्राचीन भी कलीसिया में होना जरूरी है.
They should see clearly the movements of each flock, each sheep in the flock.
और जो झुंड के हरेक जो भेड़ है उनके चाल चलन को बड़े ध्यान से देखना है.
They should know where the correction is essential.
और उनको ये जानना चाहिए कहां पे शिक्षा हमें देना है.
And thus very carefully and wisely they should steer them in the right path.
और बड़े सावधानी के साथ और बड़े ज्ञान के साथ उन्हें सही रास्ता बताना है.
In Kerala, in the house in my village, I have a hymn book.
और केरला में जो मेरे घर में एक गीत की पुस्तक है,
आई केप्ट इट लाइक ए ट्रेजर.
और उसको मैंने एक बहुत एक पधा अनमोल वस्तु करके मैंने रखा है.
ए बुक विच डजंट हैव यू नो द बिगिनिंग एंड द एंड.
उसका कोई शुरुआत नहीं है ना कोई अंत है.
बट इट्स लाइक ए ट्रेजर टू मी.
मेरे लिए बहुत एक अनमोल वस्तु है ये.
You know, when I was small,
जब मैं छोटा था,
maybe I was studying in third or fourth or something like that.
मैं तीसरा या चौथी कक्षा में पढ़ रहा था.
We had an assembly in our village, which was a house church.
और हमारे गांव में एक कलीसिया था, मतलब किसी घर में इकट्ठा होते थे.
The blessed thing in that small assembly was that we had a very good elder.
वहां पे एक धन्य बात थी उस कलीसिया में जो हमारा एक प्राचीन था.
So he used to teach us and guide us in the right ways.
और वो हमें शिक्षा देता था और सही रास्ते में हमारी अगुवाई करता था.
Just 2 weeks back he passed away.
2 सप्ताह पहले वो गुजर गए.
When I was small,
जब मैं छोटा था,
well, there was a preacher in Kerala who was very mighty in preaching. He still lives there.
और केरला में एक बहुत बड़ा एक प्रचारक था और वो अभी भी वहां पर रहता है.
I wanted to become like him when I grew.
और मैं उसके समान होना मांगता था जब मैं बड़ा होऊंगा.
So I watched him in everything.
और मैं अच्छी तरह से उसको मैं देखा.
One particular thing about him is.
और एक जो विशेष बात है उसके संबंध में.
He never sings in any song, any meeting.
वो किसी भी सभा में वो गाता नहीं है.
Even in the worship meeting, he just sits like this. Maybe meditating or something, but he never sings.
और आराधना के सभा में भी वो गाता नहीं है. हो सकता है वो ध्यान करता हो.
I thought if I cannot preach like him, I can be like him in the singing at least.
यदि मैं उसके समान प्रचार नहीं करूं गाने में तो कम से कम उसके समान हो सकता हूं.
I stop singing.
मैं फिर गाना बंद कर.
I also used to sit like this.
मैं भी ऐसी बैठता था.
And this elder of ours, he noticed this.
और ये जो हमारा प्राचीन है ये इस बात को देखा.
You know what he did?
उसने क्या किया?
After the meeting, he told me, from next week onwards, you will be sitting next to me.
और दूसरा सप्ताह से तुम मेरे पास में बैठ जाओ.
You know, in the assembly hall, in the assembly, we use lot of hymn books.
और हमारे जानते हैं आप कलीसिया में बहुत से गीतों की पुस्तक हम इस्तेमाल.
He took one of the hymn book and said, now you can keep this hymn book with you.
और वो एक गीत की पुस्तक लिया और बोले ये अब से तुम इसको रख लो.
After the meeting, you don't have to keep the book here.
और सभा के बाद ये किताब को यहां मत छोड़ना.
Carry it home.
तुम अपने घर ले जाना.
It's for you.
ये तुम्हारे लिए.
I understood it. Now onwards, I cannot sit without singing.
फिर मैं समझ गया कि इसके बाद गाए बिना मैं नहीं बैठा.
I started singing.
मैं गाना प्रारंभ किया.
Probably that was the beginning for me.
और वो ही मेरे लिए शुरुआत थी.
If he had not noticed this wrong step that I am taking,
यदि उसने वो जो गलत जो मोड़ जो मैंने लिया अगर उसने नहीं देखा हो,
then I might just developed into something else and gone away from the spiritual life at all.
और हो सकता है इसके बाद मैं और कुछ मैं हो जाता और आत्मिक जीवन से चला जाता.
It was a small thing.
छोटी बात थी.
But he knew that it can lead to evil.
और वो जानता था कि वो बुराई की ओर ले जा सकता.
And he knew how to deal with that.
और वो जानता था कि इसके साथ मुझे कैसा रवैया अपनाना है.
He didn't fire me.
मेरे को डांटा नहीं.
He didn't tell that next week onwards you have to sing loudly or anything.
वो ये नहीं कहा कि दूसरे सप्ताह से तुम्हें बहुत जोर से गाना पड़ेगा.
He didn't tell me why you are, ask me why you are sitting silent and all that.
उसने ये मेरे से नहीं पूछा कि तू मौन क्यों बैठा.
He just gave me a hymn book.
वो मेरे को एक गीत की पुस्तक दी.
Made me to sit near him.
मुझे अपने पास बैठा ला.
That was a great step in my life, in fact.
मेरे जीवन में बहुत बड़ा एक कदम.
That is admonishing.
वो ही है उनको शिक्षा.
Steering the sheep in the right way.
वो जो भेड़ है सही मोड़ देना.
A small move, but it can help your sheep in a great way.
एक छोटा सा एक शिक्षा एक मोड़ मगर उनके जीवन में बहुत बड़ा काम.
But to know that you have to be very spiritually sensitive to know the need.
यदि आपको ये जानना है आत्मिक तौर से आप बहुत ही सतर्क रहने की आवश्यकता है.
Next one, in the same verse, we see that word labor, they labor among you.
और हम कि वो परिश्रम करते हैं, परिश्रम करते हैं.
They labor among you.
तुम्हारे बीच में परिश्रम करते हैं.
When you come to 1 Timothy chapter 5 and verse 17, we see what kind of labor it is.
और पहला तिमोथी 5वां अध्याय के 17वें वचन में हम देखते हैं किस प्रकार का परिश्रम है.
Laboring in word and doctrine.
और वचन में और उपदेश में परिश्रम.
Oh yes, the work of an elder is not simply a work, but it is labor, in fact.
और ये जो एक अगुवा का जो कार्य है सिर्फ एक काम करने की बात नहीं है मगर एक परिश्रम की बात है.
It is not a work which you can fulfill just living casually.
और वो एक ऐसा कार्य नहीं है कि आप यूं ही उसे ले लें.
गुड, यू हैव टू पुट योर माइंड इनटू इट.
आप अपने चिंता को वहां पे लगाओ.
लेबर फॉर इट.
परिश्रम करो.
टॉयल फॉर इट.
और उसके लिए और प्रयत्न करो.
ओह यस, यू हैव टू नो द नीड ऑफ द पीपल एंड to meet those needs, you have to really toil in the flock.
और लोगों की जरूरतों को जानने के लिए आपको बहुत ही परिश्रम करने की
Without a commitment to this great ministry the Lord has given, well, you cannot labor at all.
और यदि समर्पित आपका जीवन नहीं होगा तो आप परिश्रम नहीं कर सकोगे.
Take this leadership or the eldership as a फुल टाइम मिनिस्ट्री.
और ये जो अगुवे का जो कार्य है ये पूरे समय के सेवकाई करके आप इसे ले लीजिए.
नॉट टेलिंग दैट द फुल टाइम मिनिस्टर्स आर टू बी द एल्डर्स.
मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरे समय के जो सेवक हैं वो अगुवे बने.
बट व्हाट आई एम टेलिंग इज दैट दे दैट आर लीडर्स और एल्डर्स इन द असेंबली दे आर फुल टाइम वर्कर्स इन दैट मिनिस्ट्री.
और मेरा कहने का मतलब है जो अगुवे हैं कलीसिया में उनकी सेवकाई के क्षेत्र में वो पूरा समय उन्हें
ऑल द अदर एंगेजमेंट्स दैट दे हैव इज जस्ट टू सपोर्ट दिस मिनिस्ट्री एंड नथिंग एल्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट.
और बाकी जो सेवकाई उनकी है इस सेवकाई के लिए एक सहायता है और कुछ नहीं.
लास्टली
आखिरी बात
व्हेन यू कम टू हिब्रूज चैप्टर 13 एंड वर्स 17
हिब्रानी का 13वां अध्याय के 17वें वचन में आप आते हैं.
देयर वी आर टोल्ड दैट दीस एल्डर्स हैव टू गिव अकाउंट to the Lord of the sheep.
और 13वां अध्याय के 17वें वचन में हम देखते हैं ये जो अगुवे हैं ये जो झुंड का जो प्रभु है उनको उन्हें हिसाब देना है.
Oh, there is a day going to come when the chief shepherd is going to appear.
और जो महान रखवाला है वो एक दिन आएगा.
Oh yes, this flock that's being given into your hand by the chief shepherd. For each one, you have to give account.
और ये जो महान रखवाला ये जो झुंड आपके हाथ में दिया है एक एक का वो हिसाब लेगा.
Just a few months back, an elder spoke to me very dearly.
कुछ महीने पहले एक प्रिया एक अगुवा बहुत ही नजदीकी रीति से मुझसे बात
He told me like this.
उसने मेरे से ऐसा बातें
की. I have become old.
मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ.
But I am not able to do many things in the assembly.
और मैं बहुत सी कार्य कलीसिया में नहीं कर पाता.
But brother, I have started thinking about standing before the chief shepherd.
मगर मैं उस महान प्रधान रखवाले के सामने खड़े होने के बारे में मैं सोच.
When I am going to give account, will I be found faithful?
जब मैं उसको हिसाब दूंगा क्या मैं विश्वास योग्य पाया जाऊंगा?
Oh yes, that great burden that we all ought to have, being kept about the flock of God.
प्रिया, ये जो बड़ा जो बोझ है परमेश्वर के झुंड के प्रति इसे थोड़ा हम विचार.
When you come to Genesis chapter 31,
उत्पत्ति का 31वां अध्याय में जब आते हैं
verses 38 to 42,
38 से लेकर 42वें वचन तक.
Don't have time, we won't read it.
हम नहीं पढ़ेंगे, हमारे पास समय नहीं है.
There we see Jacob giving his account to Laban.
और लबान को याकूब अपना हिसाब देते हुए देखते हैं.
He says nothing of your flock was lost when I was looking after it.
और जब मैं झुंड की रखवाली करता था तुम्हारे झुंड में एक भी भेड़ को मैं नहीं खोया.
With boldness he says, well, your flock prospered under my care.
और वो बड़े हयाव से कहता है कि तुम्हारा झुंड जो है मेरे देख रेख में बड़ा.
When you come to Ezekiel chapter 34,
Ezekiel की पुस्तक में 34वें अध्याय
in verses 1 to 10,
1 से 10 वचन में
there we see Lord's burden concerning his sheep.
और वहां पे प्रभु का बोझ अपने भेड़ के संबंध में देखते
हैं. The Lord is telling like this.
वहां पे प्रभु ऐसा कहता है.
All the shepherds whom I kept on my flock, they are not looking after, they are not feeding the flock, but they are feeding themselves.
और जो झुंड है कि जो रखवाली करने के लिए मैंने अगुओं को चरवाहों को रखा है वो भेड़ की रखवाली नहीं करते हैं मगर वो अपना पेट भरते हैं.
Oh, the shepherds, they are becoming big.
और वो जो चरवाहे हैं वो बड़े होते जा रहे हैं.
The flock was diminishing.
मगर जो झुंड है वो छोटा होता जा रहा
है. Oh yes, for the Lord it's very much serious.
प्रभु के लिए बहुत बड़ी गंभीर बात है.
He says, I will remove the shepherds.
वो कहता है मैं चरवाहों को हटा दूंगा.
I will give my flock to the people who to the men who will look after it carefully.
और मैं अपने झुंड को उन मनुष्यों को दे दूंगा जो उनकी देखरेख कर सके.
He should remember that about each and every flock that's being given into our hands, the Lord has got that same burden.
और प्रियो जो झुंड एक एक झुंड के जो भेड़ जो हमें दिया गया है वो ही चिंता प्रभु उनकी करता है.
When you come to 1 Peter chapter 4,
यदि आप पहला पत्रस के चौथे अध्याय में आए.
Though we don't have time, we will turn to it.
हमारे पास समय नहीं है अभी उनको देखें.
1 Peter chapter 4,
पहला पत्रस का चौथा अध्याय.
Look at verse 17.
17वां वचन देखिए.
The time is come that the judgment must begin at the house of God.
वो समय आ गया है जहां परमेश्वर का न्याय परमेश्वर के भवन से आरंभ होगा.
Start where?
कहां से?
At the house of God.
परमेश्वर का भवन से.
Then come to chapter 5.
जब पांचवें अध्याय में आए,
we see Peter instructing the elders.
और वहां पे जो अगुए हैं उनको शिक्षा देते हुए देखता
है. Keeping this in our mind, let's turn to Ezekiel chapter 9.
इसको ध्यान में रखते हुए Ezekiel की पुस्तक उसके नौवे अध्याय को जरा देखेंगे.
And verse 6.
नौवा अध्याय को उसका छठा वचन.
When you come to chapter 9, we see the Lord bringing judgment upon the upon Jerusalem.
और हम देखते हैं परमेश्वर यरूशलेम के ऊपर वो न्याय लाते हुए हम देखते हैं.
When you come to verse 6, we read like this.
नौवा अध्याय जब आते हैं हम ऐसा पढ़ते हैं.
Slay utterly old and young, both maids and little children.
पढ़िए बेटे.
But come not near any man upon whom is the mark. Notice the next statement.
दूसरी बात को जरा देखें.
Begin at my sanctuary.
मेरे पवित्र स्थान से आरंभ करना.
Peter says the garments going to start in the house of God.
पत्रस कहता है परमेश्वर के भवन से वो शुरुआत करेगा.
When God starts in the house of God,
जब परमेश्वर अपने भवन से आरंभ करेगा,
with whom he will begin,
किसके साथ वो आरंभ करेगा.
Look at the next portion of verse 6.
और छठे वचन का दूसरा भाग देखें.
Then they began at the ancient men. He began with the elders.
वहां पे प्राचीनों से आरंभ किया.
In 1 Peter 4, Peter said the Lord is going to begin in the house of God.
और पहला पत्र चौथे अध्याय में परमेश्वर अपने भवन में आरंभ करेगा.
They knew that when God begins in the house of God, he is going to begin with the ancients, with the elders.
और जब परमेश्वर अपने भवन से अपना कार्य आरंभ करेगा, जो पूर्व लोग हैं या प्राचीन उनसे आरंभ करेगा.
So when he begins chapter 5, he says, elders, I'm exhorting you, you better feed the flock.
और पांचवा अध्याय की शुरुआत में वो कहता है प्राचीन अगुए लोग भेड़ की रखवाली करो.
See the great responsibility.
ये बड़े जिम्मेवारी को देखो.
This duty should not be taken with a lackadaisical attitude.
और ये जो कार्य है हम उसे यूं ही हल्का ना समझे.
One more verse.
एक और वचन.
That's from Proverbs chapter 27.
नीति वचन उसका 27वें अध्याय से
देखें. Verse 23 we read like this.
23वां वचन को हम.
Be thou diligent to know the state of thy flocks and look well to thy herd. What a great advice for the wise man.
ये जो ज्ञानी पुरुष से कितना बड़ा एक वो हमें शिक्षा देता है.
May the Lord help us that we may know this great duty, the burden of this great duty, and be faithful to it.
प्रभु हमारी सहायता करे. ये जो महान जो जिम्मेवारी प्रभु हमें दिया है उसको हम ठीक से निभा.
Feed the flock.
उसकी झुंड की रखवाली.
Watch over them.
वो उसकी देखरेख कर.
Be before them as examples.
उनके सामने एक नमूना बन के खड़ा हो.
Rule over them.
उनके ऊपर शासन कर.
Steer them, admonish them in the right way.
और उनको शिक्षा दे और सही मार्ग में उन्हें मोड़.
Labor for them.
उनके लिए परिश्रम कर.
Oh, because you are going to give your account to the Lord of that flock.
और क्योंकि उन प्रभु जो प्रधान रखवाला है उनको तुम हिसाब.
This is the great duty that every leaders in the assembly have.
और ये बहुत बड़ी जिम्मेवारी है जो कलीसिया के हरेक अगुओं की है.
Coming back to our verse with which began.
उन वचन को वापस आए जहां पे हम शुरुआत आए.
Titus 1.
तीतु की पत्री उसका पहला अध्याय.
There in verse 9 we saw that this great duty is being reminded that they have to exhort and to convince.
पहले अध्याय के नौवे वचन में हमने ऐसा पढ़ा है कि उन्हें मतलब उनको सही ठहराना या उनको शिक्षा देना.
And now for this duty,
और फिर इस कार्य के लिए
something is essential.
कुछ चीज की जरूरत है.
What is that?
क्या है?
They should be qualified.
वो योग्यता प्राप्त हो.
In verses 6 onwards till the beginning of verse 9, we see the qualifications being given.
6 से लेके 9वें वचन तक उनकी योग्यता को हम देखते हैं.
Even in 1 Timothy chapter 3, the whole chapter gives a long list of qualifications that should be there in the leadership.
और जो अगुआ करते हैं पहला तिमोथी
तीसरा अध्याय का पूरा जो अध्याय है उनकी योग्यता को प्रदान करता है.
In Acts 6 also you will see some qualifications for the leadership.
और प्रेरित कार्य छठे अध्याय में हम देखते हैं उन अगुओं की कुछ योग्यता को.
All that's written there is very clearly and directly written.
और जो भी कुछ वहां पे लिखा गया है बड़ा स्पष्ट और सीधा लिखा गया है.
Without any vagueness, well, it's being put forth. विदाउट एनी
किसी भी रीति से कुछ छुपी हुई बात नहीं है बड़ी सीधी रीति से वो प्रस्तुत की गई.
जस्ट काइंडली गो होम एंड रीड दोस पोर्शंस एंड सी व्हाट ऑल शुड बी द क्वालिफिकेशंस.
कृपा करके जब आप घर जाओगे आप इसे पढ़िएगा और योग्यता के बारे में समझिएगा.
देयर वी सी द स्टैंडर्ड बीइंग सेट.
वहां पे जो ऊंचाई जो हमें हासिल करना है वहां पे रखी गई.
इट डजंट मीन दैट ऑल द लीडर्स विल हैव ऑल दोस क्वालिफिकेशंस.
इसका मतलब ये नहीं है कि सभी अगुओं की योग्यता होगी.
ओह इट डजंट मीन दैट वी विल हैव एल्डर्स ओनली इफ वी हैव द परफेक्ट एल्डर्स.
और इसका मतलब ये नहीं है हम प्राचीन जब ही नियुक्त करेंगे प्राचीन जब ही होंगे जब वो पूर्ण रीति से सिद्ध होंगे.
As I mentioned in one of the classes,
और मैं एक ऐसे क्लास में मैंने आपको बताया.
We can expect perfect elders only if we have what? Perfect congregations.
हमें सिद्ध अगुआ की हम आशा जब ही रख सकते हैं जब वो कलीसिया के जो सदस्य हैं वो भी सिद्ध रहे.
If you don't have perfect elders,
यदि आपके पास सिद्ध अगुए नहीं है,
don't go back home and say none of you can be elders. From today onwards, because this is what we learned in the conference.
आप घर जाके ये मत बोलिए आप में से कोई भी ये प्राचीन होने की योग्यता नहीं है. यही हमने कॉन्फ्रेंस में सीखा.
Don't create problems in the local assembly.
स्थानीय कलीसिया में आप समस्या खड़ा मत करिए.
If you don't have perfect elders,
यदि आपके पास सिद्ध अगुए नहीं है,
what you can do is,
आप क्या कर सकते
हैं? Pray for them.
उनके लिए प्रार्थना करिए.
And be also perfect.
और हम भी सिद्ध बने.
Look at yourself.
हम अपने को देखें.
Lord has set these qualifications for them because God designs those qualifications in every sheep of that flock.
परमेश्वर ने ये जो योग्यता सामने रखी है क्योंकि परमेश्वर की चाह ये है कि हर एक भेड़ में ये योग्यता हो.
May the Lord help us that we may know this truth and apply it in our own lives.
प्रभु हमारी सहायता करे इस सत्य को हम जाने और हम अपने व्यक्ति के जीवन में इसे लागू करें.
Now when you come to our duty to the elders,
जब हम अपने काम को उन प्राचीनों के प्रति देखते हैं.
Just read one verse and close.
हम एक वचन पढ़ के हम समाप्त करेंगे.
I think my time is over.
मेरा समय हो गया है.
Verse 17.
सत्रवा वचन.
Chapter 13, verse 17.
Hebrews.
Yeah.
Hebrew का 13 अध्याय का 17वां वचन. हिब्रानी का 13 अध्याय का 17वां वचन.
Obey them that have the rule over you and submit yourselves, for they watch over your souls as they that must give account, that they may do it with joy and not with grief, for this is unprofitable for you. Yeah, what should be our attitude?
हमारा क्या विचार होना चाहिए?
Obey.
उनकी आज्ञा माने.
There are people who are set there by God Himself.
परमेश्वर ने उन्हें वहां पे नियुक्त किया.
Submit to them.
उनके अधीन रहे.
Because there are people who are supposed to give account to the Lord.
क्योंकि वो प्रभु को वो अपना हिसाब देंगे.
There are some people who are supposed to labor among you.
और ये वो लोग हैं जो आपके बीच में परिश्रम करना है.
They should do it with joy.
वो आनंद के साथ करें.
They should not be doing labor among you with grief.
और बहुत ही कुड़कुड़ाते हुए आपके बीच में परिश्रम ना.
Oh yes, if at all that happens.
ये अगर ऐसा होता है.
Last portion it says for this is unprofitable for them, you.
यहां पे क्या लिखा है उसका आखिरी बात. क्योंकि इस दशा में तुम्हें कुछ लाभ नहीं.
It's unprofitable for you.
तुम्हारे लिए कोई लाभ नहीं.
If they are not able to do their work as they ought to do, you are losing.
यदि वो किस प्रकार उन्हें काम करना है अगर वो नहीं कर सकते हैं इसमें तुम्हारा लाभ नहीं.
That word unprofitable there is interesting.
यहाँ पे जो तुम्हारे लिए लाभ नहीं है, ये जो शब्द है बहुत ही देखने योग्य है.
The literal meaning of that word is,
एक वास्तविक इसका अर्थ क्या है?
And if they are not able to do it with joy and fulfill their duties, well, it's like, for you, it is like taking inferior grain.
यदि इनके जो कार्य है इसको वो सही रीति से या बिना लाभ वो करते हैं, इसका मतलब ये है जो दाना है वो हल्का दाना आप लेते हैं.
फैलेस्टिन बार्ली वॉज वेरी कॉमन.
जौ, जौ जो है फैलेस्टीन में आम था.
इट्स नॉट वेरी रिच इन प्रोटीन और विटामिन और एनीथिंग.
विटामिन में या प्रोटीन में ज्यादा वो भरा नहीं है.
कॉमन पीपल एट इट.
साधारण लोग उसे खाते हैं.
Then you had wheat there.
वहां पे गेहूं था.
And other grains also.
और दूसरे दाने भी थे.
That was very rich grain.
बहुत ही वो पौष्टिक था.
Eat wheat or barley, well, you can fill your stomach, no problem.
आप गेहूं खाएं या जौ खाएं, अपने पेट भर सकते थे.
But the effect of it will be different.
मगर उसका जो प्रभाव है वो अलग ही रहेगा.
They that eat good grain, well, they will be more healthy.
जो अच्छा दाना खाते हैं वो और भी तंदुरुस्त रहेंगे.
They will have no swine flu, they will have no cold, you know.
उनको swine flu नहीं होगा या ऐसा अन्य बीमारी नहीं होगा.
हाँ, they will be healthy.
वो काफी तंदुरुस्त रहेंगे.
But they that eat barley and inferior grain.
और जो जौ और ऐसा हल्का दाना खाते हैं,
they also will have their stomach full.
उनका भी पेट भरेगा.
No problems.
उनकी कोई समस्या नहीं रहेगी.
They will not be as healthy as the other ones.
जैसे वो दूसरे तंदुरुस्त हैं वैसे नहीं रहे.
If we don't allow the elders to do their work as they ought to do,
अगर हम प्राचीनों को उनके काम जैसे उन्हें करना है यदि हम उनको अनुमति नहीं देते,
if it is rebellion that characterizes your flock,
और यदि आपके झुंड में बलवा की बात है,
you can continue only as taking the barley or inferior grain.
आप यूं ही जो जौ और हल्का कमजोर दाना खाते हुए पाओ.
यू विल कंटिन्यू एक्सिस्टिंग, योर डोर्स विल नॉट बी क्लोज डाउन, नो प्रॉब्लम.
आप जिएंगे, दरवाजा बंद नहीं होगा.
बट इट विल नॉट बी ए हेल्थी एक्सिस्टेंस.
मगर आपके लिए एक तंदुरुस्त जीवन नहीं रहेगा.
मे द लॉर्ड हेल्प अस दैट वी मे रिमेंबर दिस एंड डू और फुलफिल आवर ड्यूटीज टू द लीडरशिप.
प्रभु हमारी सहायता करे, इन बातों को हम स्मरण रखें और हमारी जो जिम्मेवारी है उसे हम पूरा.
When we come to Lamentations chapter 4,
यदि हम विलाप गीत चौथे अध्याय में जब आते हैं,
there we see the condition of the end times.
और अंतिम समय, अंतिम युग के कुछ बातों को हम देखते हैं.
The character of the people when they are in ruins.
और जब वो एक गिरी हालत में है, उनके चरित्र को हम, उनके दशा को देखते हैं.
Jeremiah says like this in chapter 4 and verse 16.
विलाप गीत का चौथा अध्याय के 16 वचन में यरमया यू कहता है.
यू सी हियर Jeremiah is describing about the destruction of Jerusalem.
और यरूशलेम का जो विनाश है, यरमया उसका वहां वर्णन करता है.
God did not regard them.
परमेश्वर ने उनके ध्यान नहीं दिया.
He has scattered them, divided them.
उनको विभाजित किया, तितर-बितर कर दिया.
Why?
क्यों?
They respected not the persons of the priests.
क्योंकि जो हाकिम थे, जो अगुए हैं, उनका वो सम्मान नहीं.
Favored not the elders.
वहां पे जो प्राचीन हैं उनके प्रति उनका रवैया ठीक नहीं.
We have that in chapter 5 and verse 12 also, we won't read.
5 और 12वें वचन में भी हम देखते हैं, मगर हम पढ़ेंगे.
So let not that character characterize our assembly.
प्रियो, ये हमारी कलीसिया में ऐसा रुख ना रहे.
Let there be leadership and let there be submission.
और वहां पे अगुवे भी हो और अधीनता भी.
Especially may the Lord help all those who are in leadership, all those responsible brethren to fulfill the responsibilities that we have been concerned.
प्रियो, सबसे पहले प्रभु हमारी सहायता करे जो जिम्मेवारियों के जो हमने देखे हैं, जो अगुवे लोग हैं उसे वो पूरा कर
पाए. There may be problems.
समस्या रहेंगी.
Entrances may be there in the ministry.
और सेवकाई में बाधाएं रहेंगी.
But those are not excuses for us to be, you know, lethargic towards the ministry that we have.
मगर वो हमारे लिए बहाना नहीं है हमारी सेवकाई में हम थोड़े मतलब आलसियर हैं.
Constrained by the love of Christ, let's fulfill the work of God.
मसीह के प्रेम से हम विवश होके परमेश्वर की सेवकाई को हम पूरा
You remember chapter 21 of John's Gospel.
योहन्ना का 21वें अध्याय को स्मरण कीजिए.
We see there the Lord coming and restoring Peter into the ministry.
और हम देखते हैं वहां पे प्रभु आके पतरस को सेवकाई में फिर नियुक्त करता है.
Very familiar portions.
बहुत ही जाना माना एक
Lord came and asked what?
प्रभु आके क्या पूछा?
Do you love me more than this?
इससे ज्यादा तुम मुझसे प्रेम रखते हो?
Then he said yes.
हाँ.
Then what was the thing that the Lord said?
प्रभु ने क्या कहा?
Feed my sheep.
मेरे भेड़ की रखवाली कर.
Three times the question was asked.
तीन बार वो सवाल पूछा.
We see three times he answered.
तीन बार उसने उत्तर दिया.
We see the Lord telling him, feed my sheep, feed my lambs, feed my sheep.
मैं मेरे भेड़ की रखवाली कर, मेरे मेमने की रखवाली कर, ऐसा करके कहते हैं.
If I were in the place of the Lord, I would ask like this.
अगर मैं प्रभु के स्थान में होता तो मैं ऐसा पूछता.
Simon, son of Jonas.
सीमोन योना का पुत्र.
Look at the flock.
वो झुंड को देख.
Do you love it?
क्या तुम उससे प्रेम करते हो?
Peter would say yes.
पतरस कहेगा हाँ.
Then look after it.
उसकी देखरेख कर.
That would have been more reasonable, right?
ऐसा लगता है कि ये सही रास्ता था.
That's not what the Lord is telling.
मगर प्रभु ऐसा नहीं कहता है.
Do you love me?
तू क्या मुझसे प्रेम करता है?
If yes,
अगर हां,
look after it.
मेरी भेड़ की रखवाली कर.
Our ministry should be constrained by our love to the Lord.
हमारी जो सेवकाई है प्रभु के प्रति, जो हमारा प्रेम है, उसी के उस काय जाने या उसी के मार्ग में होना चाहिए.
If you are doing your ministry with a very great love and desire for the flock, you may not be able to work for the Lord consistently.
यदि आप आपकी सेवकाई भेड़ के प्रति आपका बहुत बड़ा प्रेम है, बहुत बड़ा चिंता है, आप सेवा नहीं कर पाओगे.
Because the relationship that you have with the flock now may not be there tomorrow.
जो रिश्ता आप झुंड के साथ बनाए हैं वो सकता कल नहीं होगा.
Today they are very loving.
आज बहुत प्रेम जताते हैं.
How are you, brother? Everything will be there.
भाई आप कैसे हैं? सब कुछ होगा.
But tomorrow they will start kicking.
कल आप लात मारेंगे.
Then you will not be able to love them.
फिर आप उनसे प्रेम नहीं कर सकते.
You will not be able to minister.
उनकी सेवा नहीं कर सकते.
But the love to the Lord is consistent.
मगर जो प्रभु के प्रति जो आपका प्रेम है वो निरंतर है.
He never changes.
वो कभी बदलता
नहीं. If you look after the flock with the love constraint, with the constraining love of Jesus Christ, then we will be able to be consistent in the ministry.
यदि सेवकाई हमारा प्रभु के प्रति जो प्रेम है, जो हमें विवश करता है, उसे मद्देनजर रख के झुंड की सेवा करें तो हम कर पाएंगे.
आई एम नॉट टेलिंग दैट वी शुड नॉट लव द फ्लॉक.
मैं ये नहीं कहता हूं कि झुंड से आप प्रेम मत.
इफ यू लव द लॉर्ड वी विल लव हिज फ्लॉक आल्सो.
यदि आप प्रभु से प्रेम करेंगे उसके झुंड से भी प्रेम करोगे.
बट लेट अस रिमेंबर दैट विच मूव्स अस इन द मिनिस्ट्री शुड बी आवर लव टुवर्ड द लॉर्ड.
मगर इस बात को हम स्मरण करें, जो हमें सेवकाई में उत्तेजित करता है वो प्रभु के प्रति हमारा प्रेम.
मे द लॉर्ड हेल्प अस.
प्रभु हमारी सहायता करें.